शुरू से ऐसी थोड़ी थी। जालिम दुनिया ने परी तेहरानी का ये हाल कर दिया। मैं यहाँ तुम्हें बेवकूफ बनाकर रकम ऐंठने नहीं आई, इस बार माल का नहीं मामला है, दिल का मामला है। मैं भी एक माँ हूँ, मुझे मालूम है तुम्हारी क्या हालत है, लेकिन अगर देर की तो चिड़िया उड़ जाएगी। यहाँ जाओ उसे ढूंढो।
लेकिन कहाँ से?
अगर उस बार चार पैसों के लिए मेरा मूड ऑफ न किया होता तो तूबा का पता बहुत पहले चल गया होता। जिद विद अब नहीं करो, अब जिद नहीं चलेगी। जाओ उसे ढूंढो ढूंढो।
लेकिन कैसे?
सूंघो सूंघो। तुम्हारी माँ की खुशबू तुम्हारे घर में है, गहरी सांस लेके तलाश करो। साए की तरह तुम्हारे साथ रहती है, परेशान है वो। अगर तुमने हिम्मत की तो उसे ढूंढ लोगी, मैं जानती हूँ।
देखो देखो मैं कहाँ से शुरू करूँ?
मुसाफिर खाने आफ्ताब, रेलवे स्टेशन का चौराहा। मुसाफिर खाने में एक औरत मिलेगी जो साए की तरह तुम्हारे पीछे लगी रहती है, हमेशा तुम्हारा पीछा करती है, लेकिन अगर तुमने देर की तो खो दोगी। जाओ ढूंढो उसको।
मुसाफिर खाना।
बस एक बात और सुनो, अगर नहीं कहूंगी दिल फट जाएगा। माँ को देखना तो उसके गोद में सर रख के खूब रोना, उसका ख्याल रखना, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। ख्याल रखना उसका। अगर उसे पता चल गया कि मैंने यहाँ आके तुमसे क्या बातें की है ना, तो फिर मेरी खाल उधेड़ के मुझे तो गिद्धों के सामने डाल देगी।
करना चाहती हूँ
मैं, ये जानना चाहती हूँ कि वो है कौन,
किस तरह से,
ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जानना भी तो जरूरी है।
तो फिर हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ।
चलो, चलो।
माफ कीजिए, मुझे इसकी इजाजत नहीं है।
लेकिन जनाब मुझे उनसे बात करना जरूरी है।
उफ़, कानून के मुताबिक मुझे यहाँ ठहरने वालों के नाम और पतों को राज में रखना होता है, खास तौर पर खवातीन के।
लेकिन हम लोग भी तो उन्हीं की तरह खातून हैं।
नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बेटी, तुम लोग जाओ यहाँ से।
माफ कीजिएगा जनाब, एक मिनट मेरी बात तो सुने, अगर आपको वाकये का पता चलेगा तो आप मेरी मदद करेंगे।
आप क्या बताऊं, कानून
तो कम से कम ये तो बताएं कि जो नाम मैं ले रही हूँ वो सही है या नहीं।
क्या आप उन्हें जानती हैं?
तुम्हें उनका नाम मालूम है?
और क्या मतलब, मेरा ख्याल है कि जानती हूँ।
अगर पूछती हो तो मुझसे क्यों पूछताछ कर रही हो?
देखिए मुझे बस ये जानना है कि उन खातून का नाम आसिया रिजवी है या नहीं।
आप कौन है?
देखिए आप प्लीज मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मेरा अंदाजा सही है या नहीं।
ओफो, ठीक है, हाँ उनका नाम आसिया रिजवी है, बस खुश हो।
देखिए मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज।
तुम उसे कैसे जानती हो? अरे मैं तुमसे क्या पूछ रही
हूँ, सब बातें कहाँ से मालूम?
देखो बहुत लंबी दास्तान है, बाद में बताऊंगी। उनके कमरे का नंबर बताए मुझे।
नहीं हो सकता बेटी, बिल्कुल नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? खुदा के लिए मैं उनको ये नहीं बताऊंगी कि आपने मदद की है मेरी।
ओफो, ओफो, मुमकिन नहीं है, वो यहाँ से जा चुकी हैं।
चली गई लेकिन कहाँ?
ठीक है, कानून के खिलाफ वर्जी तो कर ही दी है, ये भी सही, वो आप लोगों के आने से थोड़ी देर पहले यहाँ से जा चुकी हैं।
लेकिन आपको तो पता होगा कि वो कहाँ जा रही है ना?
मुझे क्या मालूम लड़की, वो हर साल गर्मियों में जुनूबी इलाके से आती हैं, कुछ दिनों तक यहाँ रहती हैं और फिर अपने वतन लौट जाती हैं। वहीं गई होंगी जुनूबी इलाके में, बंदर अब्बास में शायद।
लेकिन कैसे?
ट्रेन से, वो रेलवे स्टेशन गई है।
ट्रेन कब छूटेगी?
3 बजे।
3 बजे यानी आधे घंटे बाद। जल्दी चलो,
चलो, चलो, चलो, चलो, भागो।
चलो जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
माफ कीजिए, गाड़ी कहाँ से छूटती है?
इधर से।
बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा
जी।
माजरत चाहती हूँ।
कोई बात नहीं।
रुकिए, एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट। आप कौन है? रुकिए रुकिए, क्यों मैं परछाई की तरह मेरे पीछे लगी रहती है? रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। रुकिए,
ये रहा मंसूर सारिमी वल्द गुलाम रजा सारिमी, पैदाइश 1977। यही है?
जी यही है।
बड़ा फ़ाल आदमी है, 11 इजादात अब तक रजिस्टर करा चुका है।
आप बताएं, मैं नोट कर रहा हूँ।
जी कोई बात नहीं, लिखिए।
जी शुरू करें।
कपड़े और बर्तन एक साथ धोने वाली मशीन, एयर ग्रिल, सयाल चीजों को पंप करने की सलाहियत के साथ, गैस से चलने वाला फ्रीजर, 7 गुना ज्यादा ताकतवर, 2 परतों वाला शीशा जो रोशनी के मुकाबले में हसास है, N2 नामी दुबला करने वाली बेल्ट, ब्रेक ऑयल की बचत करने वाली मशीन, एंटी फायर साउंड प्रूफ सिस्टम, चार्जेबल प्रेस, मोटरसाइकिल के ईंधन में बेहतरी करने का सिस्टम, ऐसे फिल्टर जिन पर जमे हुए कार्बन को धोना मुमकिन है।
बड़ी बात है, ठीक है, दिलचस्प आदमी लगते हैं ये।
अगर सचमुच आप इनकी कोई मदद कर सकते हैं तो इनकी इजादात को अमली जामा पहनाने में आप बहुत मदद करेंगे।
अभी से क्या कहा जाए, उम्मीद है कि उनसे मुआयदा हो जाएगा। बहरहाल मदद के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया।
नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। कोई और खिदमत अच्छा? बताएं।
अगर इजाजत हो तो मैं
जैसे आप नसीब समझे, मैं खिदमत।
खुदा हाफिज।
میں غائب ہو گئی.
ہمیں اسے بھاگنے نہیں دینا چاہیے تھا.
اس وقت کیا کیا جائے؟
میرے دماغ میں آئیڈیا آیا ہے. فوراً ہوائی اڈے چلتے ہیں, بندر عباس جانے والے جہاز سے بیٹھ کر بندر عباس چلتے ہیں. وہاں پہنچیں گے تو بعد میں ٹرین بھی آ جائے گی اور ہم اسے پکڑ کر لے آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟
ٹرین کو پکڑ لیں گے.
اوفو شہر, میں سنجیدگی سے بات کر رہی ہوں.
تو بھائی پہلے بتا دیتی کہ تم سنجیدہ ہو تو ہم غور کرتے.
تو کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟
دیکھو یہ ٹرین ہوائی جہاز کی طرح نہیں ہوتی. جو یہاں سے چلے تو بندر عباس ہی رکے, راستے بھر کم سے کم 10 اسٹیشنوں پر رکے گی. کیا پتا کون سے اسٹیشن پر تو جائے. اچھا کہیں تو تمہارا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ہوائی جہاز کو روک روک کر اسٹیشن چیک کریں؟
تھکتی نہیں ہو اتنا لڑتی ہو؟ اتنا بولنے کے بجائے ذرا خاموش رہو تو دیکھیں کیا کرے.
جرمانہ لگا دیا. مزہ آیا, بہت مزہ آیا جو جرمانہ ہو گیا.
پروانہ کھا لو بیٹا,
503 کو ضرب دو.
کھا لو بیٹا جلدی کھاؤ.
کتنا ہوا؟
671,08,97,000 ریال.
ماشاء اللہ بڑی تیز لڑکی ہے. سارا حساب کتاب ٹھیک ہوتا ہے اس کا. قالین بھی اسی طرح بنتی ہے.
پروانہ.
ہاں
امی, یہ وہی اکاؤنٹنٹ ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہی تھی کہ امام خوینی رفائی ادارے سے قرض لے کے جیل سے چھٹی ہے.
ہاں بیٹی. ناصر.
ہاں بیٹا.
بہت دنوں سے پروانے کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا ہے. اس کی تنخواہ بڑھنی چاہیے. اب خدا نخواستہ وہ اپنے کام سے اگر نا امید ہو گئی اور کسی غلط راستے پر نکل گئی تو کیا ہوگا؟
جی 10% کافی ہوگا.
نہیں 15%.
کھا لو بیٹا, میں دیکھتی ہوں کہ کون ہے. کون ہے؟ امی منصور ہے, کہہ رہا ہے کہ آؤ دروازے پہ, مجھے تم سے کام ہے.
بیٹھو. کہاں جا رہے ہو تم؟ بیٹھو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زہرا کو لینے آیا ہوں. تو کیا؟ میں اسے گھر لے جانے آیا ہوں.
یہاں مناسب نہیں ہے, اندر آؤ تم. اچھا پھر یہ بتاؤ تمہارے کام کیا ہے؟
کچھ نہیں, میں نے کہا نا زہرا سے کہہ دیں آئے چلے گھر,
تاکہ وہاں لے جا کر تم اس کی پٹائی کرو.
پٹائی؟
تو پھر اس کی آنکھوں کا نیل جو تھا وہ شاید یوں ہی پڑ گیا ہوگا.
وہ تو گر پڑی تھی اس لیے. یقین کریں میں نے کبھی بھی زہرا پر ہاتھ نہیں اٹھایا. توبہ صاحبہ,
اب تک تم نے جو کچھ بھی کیا میں نے سمجھا کہ یہ بدقسمت ہو اور تجربے کار نہیں. زہرا میری اکلوتی بیٹی ہے, ظاہر ہے کہ میں اس کی حالت یہ تو نہیں دیکھ سکتی نا. منصور صاحب, تجارت میں نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے لیکن اخلاقی دیوالیے پن کا کچھ نہیں کیا جا سکتا, سمجھے؟
جب آپ کو یہ سب معلوم ہے تو پھر کیوں نہیں اس کی زندگی سنوارنے کے لیے مدد کرتی؟
یعنی پھر سے کوئی تمہیں رقم دوں تاکہ تم کوئی کام کرو؟ نہیں, اس بار میں انکار کر رہی ہوں. میں نے تمہارے اور زہرا کے لیے جو کچھ ہو سکا کیا, یہاں تک کہ تمہارے لیے ایک اچھی سی نوکری بھی تلاش کی اور تمہیں دی.
اچھی سی نوکری؟ آپ اسے اچھی نوکری کہتی ہیں؟ نہیں توبہ صاحبہ نہیں, میں نے پوری عمر تعلیم اس لیے حاصل نہیں کی کہ اب جا کر کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کا بیمہ کروں. گاڑیوں کا بیمہ, فائر انشورنس, لائف انشورنس. میں نے ڈگری اس لیے حاصل کی ہے کہ میں صنعت کار بنوں, نوکری نہیں کروں گا.
تجربے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم بزنس نہیں کر سکتے. زہرا یہیں رہے گی, اس کے ابا کے آنے کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. مال و دولت, قالین, ان سب کے بارے میں بھی سوچنا تم چھوڑ دو, سمجھے؟ 100 بار میں کہہ چکی ہوں کہ یہ سب میرے پاس امانتیں ہیں اور بس, سمجھے؟
ہاں سمجھ رہا ہوں. یہ مال و دولت اور جائیداد سب آپ ہی کو مبارک ہو. بہتر ہے آپ بھی خوب اچھی طرح سے سن لیں. میں کبھی بھی بے چونچرا آپ لوگوں کی بات ماننے والا دعوت نہیں رہا اور نہ رہوں گا. وہ قیمتی قالین بھی آپ لوگوں کو ہی مبارک ہو, اسے محفوظ رکھیں, ایک دن کام آئیں گے.
امی کیا ہوا؟ امی ٹھیک تو ہیں؟ खुदा लानत करे तुम पर मंसूर। अम्मी क्या हो गया आखिर?
ठीक हो?
चलो अंदर चलते हैं।
ठीक हो?
सारमी साहब
जी,
मुझे साबरी कहते हैं, अफशीन साबरी
जी। फरमाए।
अगर आपके पास वक्त हो तो मैं कुछ मिनट आपका वक्त लूंगा, मुझे आपसे बात करनी है।
किस सिलसिले में?
असल में काम से आपकी दिलचस्पी और मेहनत, मेरी सरमायाकारी के साथ मिलकर हम दोनों को बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार कर सकती है।
मैं आपकी बात समझा नहीं।
आप बैठे, मैं समझाता हूँ।
मुझे ताज्जुब है इस बात पर कि आप मुझ जैसे आदमी पास क्यों आए।
बड़ी वाज़ेह बात है, आपकी तख्लीकी सलाहियतों की वजह से। मैंने इजादात रजिस्टर करने वाले इदारे से आपके बारे में मालूमात हासिल की है। असल में आपके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, जो यकीनी तौर पर हमारे समाज में कम ही लोगों के लिए काबिल फहम है। हमारी कंपनी का ख्याल है लंबे रास्तों को भी छोटे छोटे कदमों से तय किया जा सकता है।
ठीक है, आप मुझसे चाहते क्या हैं?
असल में हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आप हमसे क्या चाहते हैं।
किस लिए?
बिल्कुल साफ है बात, इसलिए कि अगर आपके पास कोई आइडिया या कोई प्रोजेक्ट हो तो हमें बताएं।
मतलब आप मेरे प्रोजेक्ट के लिए सरमायाकारी करना चाहते हैं?
जी बिल्कुल, अलबत्ता इस शर्त के साथ कि आप तैयार हों।
देखिए, असल में ऐसा है कि मुझे इस सिलसिले में बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं कि आपने प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड कराया है, बल्कि आपको लोन भी मिलने वाला है, तो इसका मतलब यही है कि आपका प्रोजेक्ट इक्तसादी लिहाज से फायदेमंद है।
बिल्कुल फायदेमंद होगा, यकीन करें मैं बड़ी आसानी से अपना प्रोजेक्ट बेच सकता था, लेकिन एक साल तक मेहनत की, जैसे भी हुआ काम जारी रखा, लेकिन इसके राइट्स किसी को बेचना मंजूर नहीं किया। अगर मेरे पास सिर्फ एक तिहाई रकम होती तब भी मैं बड़ी आसानी से बाजार में काम शुरू कर सकता था।
अच्छा, ये दुबला करने वाली बेल्ट पर खर्च कितना आएगा?
मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 8,500 तुम्हारे।
8,500?
और बाजार में उसकी कीमत क्या होगी?
चीन में बनने वाली 27,500 मिलती है, जबकि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है।
आपका क्या ख्याल है?
मेरे ख्याल में तो बहुत बेहतर है।
हम लोग शुरू में प्रोडक्शन के बजाय 2,000 चीनी बेल्ट इंपोर्ट करेंगे और उस पर अपना लेबल लगाकर बाजार में भेज देंगे। इस तरह से हम बैंक से लोन भी आसानी से हासिल कर सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए।
शाबाश, तुम्हारा दिमाग बहुत काम करता है। इस तरह से डुप्लीकेट माल से हम बैंक का एतमाद हासिल कर लेंगे।
अगर मैं गलत नहीं समझा हूं तो پہلے مرحلے میں ہمیں چین کی بنی ہوئی 2000 بیل کے لیے رقم کا انتظام کرنا ہوگا، ہے نا؟
جی، البتہ بندر عباس اور تہران لانے لے جانے کا خرچ بھی ہوگا، اس کے ساتھ ہی لیبل لگانے اور پیکنگ کا بھی کچھ خرچ آئے گا.
اہم مسئلہ شروعاتی رقم کی واپسی کا ہے.
پویان صاحب کا مطلب یہ ہے کہ کیا ضمانت ہے کہ ان کی لگائی ہوئی رقم واپس آ جائے گی؟
جو ضمانت بھی کہیں دینے کو تیار.
ٹھیک ہے، بعد میں معاہدہ تیار کر لیں گے. یہ رہا آپ کا ایڈوانس.